ओम शांति। आज हम आज के मुरली को रिवाइज करेंगे। बाबा ने बहुत सुंदर बातें बताई आज अव्यक्त मुरली में। ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड क्या होता है, क्या होता है? उत्सव मनाने का होता है। ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड उत्सव मनाने का है। और कैसे मनाना है उसको उत्सव, बताइए? उमंग उत्साह से, उमंग उत्साह से उत्सव मनाना है। हमारा एक एक सेकंड अनेक जन्मों का निर्माण करता है, भाग्य बनाता है, है ना? है या नहीं? हमारा ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड क्या करता है? एक एक जन्म का भाग्य का निर्माण करता है, है ना? फिर हाँ, इसे जीवन को हम कितना अच्छा उमंग उत्साह से करना चाहिए। तो उमंग और उत्साह का मूल आधार क्या है? उमंग उत्साह के लिए बाबा ने आज मुरली में बहुत सुंदर बातें बताई है कि बच्चे एक स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति चाहिए। स्मृति क्या है? आज बाबा ने क्या बोला स्मृति में, क्या बोला? बच्चे आप कौन हो? श्रेष्ठ आत्मा हो, है ना? दूसरा क्या है? आदि रतन हो। ये पॉइंट्स नोट करना। ये स्मृति ही ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह देता है। अगर स्मृति नहीं होता ना, तो उमंग उत्साह धीरे धीरे डाउन होता है। ब्राह्मण जीवन में 5 साल चल रहे हैं हम, 10 साल चल रहे हैं, 20 साल चल रहे हैं, तो अभी उमंग उत्साह नहीं होता है। क्यों? उन्नति नहीं होती है। जहां उमंग उत्साह नहीं होती है, वहां उन्नति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? हम स्मृति नहीं रखते। रोज पॉइंट्स लिखो और उसको रिवाइज करो। क्या स्मृति रखना है? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं आदार आदि रतन हूं। तीसरा क्या बोला बाबा ने? मैं बाप दादा के बहुत स्नेही आत्मा हूं। बाप दादा के स्नेही मतलब क्या है? भगवान का हम दोस्त है। स्नेही किसको बोलते हैं? दोस्त है। और दोस्ती किससे होती है? समान लेवल से होती है। ऊपर नीचे वाले से दोस्ती नहीं होती है। कभी आप देखना, जो एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है समझो, कलेक्टर है समझो, उसको कोई भिखारी से दोस्ती होती है? ऑटो रिक्शा वाले से दोस्ती होती है? नहीं होती है, क्योंकि समानता नहीं होती ना। जहां समानता होती है, वहीं क्या होता है? समीपता आ जाती है। इसलिए बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्मृति रखो। श्रेष्ठ स्मृति क्या है? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, आदि रतन हूं, मैं परमात्मा के स्नेही हूं, दोस्त हूं और समीप आत्मा हूं। इससे क्या होता है? उत्साह बहुत रहता है। और दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे नशा, नशा क्या होना चाहिए बताइए? बहुत सारी बात बताया बाबा ने नशे की। बाबा ने नशा बताया है कि बच्चे स्वयं भगवान, हम बाबा का झंडा लहराते हैं। ये शिव जयंती का मुरली है, अव्यक्त मुरली। हम भगवान के झंडा लहरा रहे हैं, लेकिन भगवान ने क्या किया? बच्चों के विशेषताओं की, गोल्डन पुष्पों के द्वारा। हम तो गुलाब के फूल डालते हैं झंडे में ना, गुलाब का फूल डालते हैं, वेराइटी वेराइटी फूल डालते हैं, झंडा को लहराते हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया? हमारा झंडा कैसे लहराया? गोल्डन फ्लावर्स से, है ना? हमारे विशेषताओं की गोल्डन फ्लावर्स से हमारा झंडा लहराया है। ये नशा होना चाहिए रोज। स्वयं भगवान हमारा झंडा लहराता है। कौन से झंडा? विशेषताओं के झंडा लहराता है। और तीसरा क्या है? स्वमान। बाबा ने एक बहुत सुंदर स्वमान दिया है। क्या दिया है? कि बच्चे जैसे भगवान इस संसार में अवतरित हुए हैं, आप सब कौन है? अवतरित आत्माएं हो, स्वयं भगवान के मददगार हो। सारी संसार की मदद तो भगवान करता है, लेकिन हम भगवान की मदद करते हैं। कितनी बड़ी स्वमान है बताओ। इसकी योग्य आत्माएं हैं हम। ये उत्साह सदा रहेंगे ना, उमंग आएगा, उमंग आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, उत्सव ही उत्सव रहेगा हमारा ब्राह्मण जीवन में। उत्साह से उमंग आता है, उमंग से उत्सव बन जाता है। जो आत्माएं उत्साह में रहते हैं, बाबा ने बहुत सुंदर बात बताया, उसके लिए क्या कर, क्या होता है बताओ, संसार के लिए क्या होता है, स्वयं के लिए, जो आत्माएं उत्साह में रहते हैं, माया का हर विघ्न सहज पार हो जाता है, वो खेल जैसा लगता है जो उत्साह में रहता है, पता ही नहीं चलता उसको भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, विघ्न आ रहा है, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है, कुछ नहीं। और बाबा ने क्या कहा, माया के खेल को कैसे देखना है, मिक्की माउस का खेल। बाबा ने बहुत सुंदर बात बताया था, बचपन में बहुत देखते थे मिक्की माउस। मिक्की माउस क्या होता है पता है, ये चूहा और बिल्ली का खेल होता है। चूहा बिल्ली को परेशान करने के लिए आती है तो चूहा बिल्ली को फंसा देता है। वेरायटी वेरायटी कहानियां होती है उसमें, कभी कुत्ता आता है, कभी बिल्ली आता है, कभी बंदर आ जाता है। बाबा ने कहा ना, अलग अलग वेरायटी वेरायटी होता रहता है उसमें, तो देखने में क्या होता है, मजा आता है, और खेलने में भी मजा आना चाहिए हमको। नहीं, हर विघ्न को एक गेंद बना के खेलो, बहुत आनंद आएगा। अगर हर गेंद को हम परेशान होकर देखेंगे, अरे ये मेरे ऊपर आएगा, मेरे को चोट लगाने आएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, घबरा जाएंगे। और कोई भी प्रकार के भाला आ जाए, जहां चाहे वहां फेंकते रहो, तो क्या होगा, रन बनते जाएंगे, स्कोर बनते जाएंगे, विजयी होते जाओगे, तो क्या होगा, खुशी मिलती जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा, माया के हर खेल को बॉल समझो, बॉल गेंद समझो, विघ्न नहीं समझो, इससे बहुत खुशी होती है ना। फिर और बाबा ने क्या कहा, आज उमंग से आने के लिए, उत्सव मनाने के लिए क्या बोला बाबा ने, हा? क्या बोला बताओ, हाँ? पहले बाबा ने बोला उत्सव में क्या करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते है, पीते हैं, नए नए पकवान बनता है, खाते भी है, पीते भी है, गाते भी है, नाचते भी है, है? तो बाबा ने क्या कहा, अगर आपके जीवन में बहुत उमंग उत्साह चाहिए, माया के विघ्नों को पार करना हो, माया का विघ्न कब पार होगा, गेम बनाकर, हम गेंद बनाकर उसको खेलेंगे तभी पार होगा ना, तो गेंद कब बनेगा वो, बाबा ने उसके लिए बहुत सुंदर बात बताया, तीन चीजें बताया, एक तन से, दूसरा मन से, तीसरा धन से। हमारा तन भी बहुत शुद्ध हो, मन भी बहुत शुद्ध हो, हमारा धन भी बहुत शुद्ध हो, तभी हम माया का खेल को गेंद बना के खेल सकते हैं। फिर तन कैसे शुद्ध होगा, भगवान ने बहुत सुंदर बात बताया, कैसे शुद्ध होगा, शुद्ध भोजन से, याद से बनाया हुआ शुद्ध भोजन स्वीकार करने से तन बहुत शुद्ध होता है और मन भी बहुत शुद्ध होता है। खास करके माताओं के पास एक बहुत सुंदर कला बाबा ने दिया है, पूरा परिवार को चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है हमारे पास। मैं एक बार विशाखापट्टनम गया था, वहां एक माता जी मुझे बता रही थी, मेरे कांटेक्ट में आई थी, नेवी में काम करता है उसका पति, उनको ब्रह्म कुमारी से माना, फुल एंटी है ना, फुल एंटी था वो। तो उसको क्या किया माता जी ने कि मुझे बताया कि भाई मेरे पति को बहुत गुस्सा आता है ब्रह्म कुमारी के प्रति, एक्चुअली जाने भी नहीं देता, नाम भी नहीं सुनना नहीं देता ना, सिवा बाग लाइट भी एक बार खरीद के ले गई थी छोटा सा, याद करूंगी करके तोड़ दिया उसको, इतना नाराज रहता है। तो मैं इसको कैसे परिवर्तन करूं, तो मैंने बहुत सुंदर आंसर बताया उसको, विधि बताया कि आप ब्रह्म भोजन है ना, आपके हाथ का खाते है ना, बोला हाँ, तो आप बहुत प्यार से बाबा को याद करो और भोग लगाओ दिल से, और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, ये आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, बाबा का बन जाएगी। उसने ऐसे रोज किया, फिर सवेरे भी आधा घंटा योग किया उस आत्मा के लिए इमर्ज करते हुए, शाम को भी आधा घंटा योग किया, तो क्या हुआ, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 21 दिन, 20 दिन, 22 दिन, ऐसा होता गया। फिर एक मास के बाद माता जी का फोन आया मुझे, उसका पति पूछता है कि उसके पत्नी को कि आप अभी भी ब्रह्म कुमार्स में जाते हो? मैं सुनता हूँ, कभी कभी जाते हो आप, सुनते हो उसका क्लासेस? हाँ क्लासेस सुनता हूँ। तो बोले कभी कभी जाओ, गुरुवार के दिन कभी कभी जाओ। बाबा का कास्केट लगाया, अमृतला योग करती थी, वो योग से मैं आपका सारा परिवार सुखी रहे, आनंदित रहे करके। और धीरे धीरे उसके अंदर क्या हुआ, परिवर्तन आया। कितना दिन में आया? एक साल में आया। मुझे माताजी बार बार पूछती थी, एक मास हो गया अभी तक पति के अंदर 100% परिवर्तन नहीं आया। 100% अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे आता जाएगा। इस आत्मा का हिसाब किताब चुक्त करना है ना आपको, चुक्त तो कराना है। उस आत्मा का अंदर शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ब्रह्मा भोजन याद से, बाबा की याद से दिल से बनाओ और शुभ भावना शुभ कामना रख के बनाओ। फिर क्या होता है, वो मन को शुद्ध कर देता है, स्वयं के मन को शुद्ध कर देता है और परिवार की सभी आत्माओं का मन को शुद्ध कर देता है। फर्स्ट, ठीक है ना। दूसरा क्या है, धन भी शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध धन बहुत दुख देता है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं अशुद्ध आत्माओं का धन स्वीकार नहीं करो, अशुद्ध आत्माओं का धन यूज नहीं करो। बाबा ने आज कहा ना, 1 लाख भी रहेगा ना उसके पास रोज का इनकम, तो भी उसकी चिंता बहुत रहती है। और जो आत्माएं हैं शुद्ध धन कमाते हैं, उनका बच्चे भी बहुत कैरेक्टरफुल होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। बाबा के बच्चों को देखो, बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे बाबा के बच्चों के, जितने भी गृहस्थ में रहते हैं उनके बच्चे बहुत संस्कारवान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। बाहर वालों के जैसा नहीं होते हमारे बच्चे, आप सबके बच्चों को देखो। इसलिए बाबा ने कहा कि धन भी बहुत शुद्ध होना चाहिए, वो धन आत्मा को बहुत सुख देगा। तब क्या होगा, तन भी मन भी धन भी। तन से क्या करना है, दिल से सेवा करो, बोले बाबा ने, है ना। तन से जितना सेवा करोगे तन की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, तन बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। और शुद्ध भोजन खिलाओ तन को, इससे क्या होता है, माया का हर परिस्थिति आपको ये गेम जैसा बनेगा, गेम गेंद जैसा बनेगा। और गेंद को क्या करते हैं, खेल सकते हो आप। और खेल में क्या होता है, विजयी होता है ना, जब तक विजयी होते रहोगे उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा। जब से उमंग उत्साह बढ़ेगा क्या होगा, हमारा हर सेकंड उत्सव जैसा लगेगा, उत्सव जैसा मजे में रहेंगे ब्राह्मण जीवन में। और बाबा ने क्या कहा बताइए, और साक्षी और साथी, साक्षी होकर दुनिया के हर खेल को देखो। साक्षी दृष्टि माने क्या होता है, परमात्मा के सर्वोच्च स्थिति है वो साक्षी दृष्टा। हमें भी क्या करना, हम भगवान के बच्चे हैं, हमें भी संसार को साक्षी होकर देखने की आदत पढ़ाना है। क्या आदत पढ़ाना है, संसार में हर आत्मा अपने अपने संस्कारों के वश, गुणों के वश होकर अपना खेल खेल रहा है। जिनके पास जितना योग्यता है खेल खेल रही है, हम भी हमारे विशेषता के अनुसार हमको खेल खेलना है जगन्नाथक ये रंग में, मंच रंग है ना। ये सारी सृष्टि क्या है, ये नाटक है, इस नाटक में हम भी खेल खेलना है। इससे क्या होता है, साक्षी दृष्टा कहते हैं, हर एक आत्मा अपना अपना खेल खेल रहे, हमें अपना कर्तव्य करना है। और दूसरा क्या है, हम परमात्मा के साथी है, है ना। तो जब भगवान के साथी है हम, क्या होगा, बाबा ने क्या कहा बताइए, साक्षी होकर साथ भगवान को साथी बनाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, जगत जीत बन जाएंगे जन्म जन्म के लिए। हमारा हार का मूल कारण होता है, विघ्नों को बहुत भारी में लेता है, हमारा बोझ का अनुभव होता है। क्यों होता है, भगवान को साथ ही नहीं रखते हैं। हम ये सोचते हैं हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं ना कर्तव्य को, कोई भी कार्य क्या होगा, बोझ अनुभव होगा, टेंशन क्रिएट करेगा। और वही परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा करा रहा है, मैं कर रहा हूं आत्मा निमित्त होकर, तो क्या होगा, हर खेल हल्का अनुभव होगा। इसलिए बाबा ने कहा ना, हर बोझ परमात्मा को दे दो तो खेल का अनुभव होगा, उमंग उत्साह आएगा, आप जगत जीत बनते जाओगे, हमेशा जीती होते रहेगी, हार कभी होगा ही नहीं आपकी। छोटे मोटे हार होंगे लेकिन फाइनल हार आपका नहीं होंगे। और बाबर वरदान में विशेष में क्या बोला, और दूसरा फॉरनर्स के साथ बाबर बाबर क्या बोला, क्या बोला, सच्ची दिल पर साहेब राजे, सच्ची दिल से परमात्मा को हर चीज अर्पण करो, बता दो हमारा कमी को कमजोरी को और परमात्मा को अर्पण कर दो सच्ची दिल से। तो क्या हो गया, वो कमजोरी आपका नहीं हुआ, परमात्मा को हो गया। आप कौन बनेगा, परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे, शक्तिशाली बच्चे बन जाओगे, गुणों का शक्तियों का सागर बन जाओगे, है ना। और चौथा क्या है, अभी वरदान बताइए, वरदान में क्या बोला बाबा ने, किसी की कमी कमजोरी नहीं देखना और गुण और शक्तियों का सहयोग देने वाला ही दाता बन जाता है, है ना, है ना। तो गुणों को कैसा देना है हमको, शुभ भावना से देना है, शुभ कामनाओं से देना है। ये भी आत्मा शुभ भावना क्या रखना है, हमारे जैसा क्या चाहिए, वर्षे की अधिकारी बने, परमात्मा के वर्षे की अधिकारी बनना चाहिए, ये शुभ भावना है। और दूसरा पुष्प भावना क्या है, ये परमात्मा समान बने, ये शुभ भावना, हमारे जैसा बने, वर्षे की अधिकारी और बाप समान बने। और शुभकामना क्या है, शुभकामना क्या है बताइए, हाँ, कोई भी व्यक्ति दुखी होगा कंगाल होगा, यही कामना रखो, ये सबसे अच्छा सुखी रहे, उसका जीवन शांत रहे और माला माल बन जाए, ये शुभ भावना और शुभ कामना ही ब्राह्मण जीवन में क्या होता है, दूसरों के प्रति दाता बन जाता है, है ना, है ना? स्लोगन बताओ, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करना ही, निरंतर सेवादारी बनना है। बाबा क्या बोला, हमको सेवा नहीं है आज, हमको स्थूल सेवा नहीं है, सूक्ष्म सेवा नहीं है, नहीं, सेवा सदा है आपके लिए, ब्राह्मण जीवन के लिए, तन से है, तन से फ्री है गए समझो, मन से करो, मन से फ्री है यथाशक्ति धन से करो, तन से मन से धन से कुछ भी किसी न किसी रीत से हमको ब्राह्मण जीवन में सेवा करते रहना है जितना हो सके उतना, इससे क्या होगा, हम निरंतर सेवादारी बनेंगे, है ना, तब हमारा जीवन भी खुश रहेगा, हम ब्राह्मण जीवन में सबको खुशी दे सकेंगे और दुआएं मिलेंगे, दुआओं का पात्र बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।